व्यंजना और सतसई। शब्द शक्तियों में व्यंजना का बहुत ही अधिक महत्व है, क्योंकि ध्वनि का मूलाधार यही शक्ति है। पहले पहल रस की प्रतिष्ठा दृश्य काव्य में हुई और रस सिद्धांत वहीं तक सीमित रहा। नाटक का मुख्य उद्देश्य विभावानुभाव आदि के द्वारा श्रृंगार करुण रस आदि की प्रतीति कराना था। इसके लिए आवश्यक था कि नाटक विस्तृति सापेक्ष हो। प्रबंध समन्वित श्रव्य काव्य में भी विभावानुभाव आदि के द्वारा रस पद्धति शक्य है, पर लघु काय मुक्तकों में रस के सभी अवयवों का सन्निवेश संभव नहीं है, अतएव उन्हें काव्य के अंतर्गत नहीं परिगणित किया जा सकता है। ध्वनि सिद्धांत रस सिद्धांत का ही विस्तार है। श्रव्य काव्य में इसी सिद्धांत के द्वारा रस की प्रतिष्ठा हुई। वस्तुतः ध्वन्यालोक के पूर्व रस और काव्य का समुचित संबंध स्थापन नहीं हो पाया था। लोचनकार ने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना। रस ध्वनित होता है इस बात को स्वीकार कर लेने पर चमत्कार चम मुक्तकों में भी रसाभिव्यक्ति की स्थिति मान ली गई। तभी तो आनंदवर्धन ने घोषणा की कि अमरुक कवे कवेरेकः श्लोकः प्रबंध सतायते। ध्वनि का मुख्य प्रयोजन है प्रतीयमान अर्थ प्रतीति, और यह व्यंजना व्यापार द्वारा ही संभव है। दूसरे शब्दों में यो भी कहा जा सकता है कि व्यंग्य अर्थ ही प्रतीयमान अर्थ होता है। व्यंजना और व्यंग्य में वही संबंध है जो कारण और कार्य में। जहां ध्वनि होगी वहां व्यंग्यत्व होगा, पर प्रत्येक व्यंग्यार्थ को ध्वनि की संज्ञा नहीं दी जा सकती। ध्वनि होने के लिए व्यंग्यार्थ को उत्कृष्ट और रमणीय होना चाहिए। इसलिए शास्त्रकारों ने ध्वनि की परिभाषा निश्चित करते हुए स्पष्ट कहा कि जहां पर शब्द और अर्थ स्वयं को तथा अपने अर्थ को गौण बनाकर प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति कराते हैं, वहां ध्वनि होती है। जहाँ व्यंग्यार्थ की अपेक्षा वाच्यार्थ अधिक रमणीय और चमत्कारी होता है, वहाँ गुणीभूत व्यंग होता है। यहाँ पर हम अभिधावादियों के मतों का उल्लेख नहीं करना चाहते जो व्यंग अर्थ के विश्वासी नहीं हैं, और न तो इस स्थल पर उन वितर्कों के उल्लेख की आवश्यकता है जो व्यंजना के पक्ष में किए गए हैं। इसी प्रकार लक्षणा में ही व्यंजना को अंतर्भुक्त मानने वाले आचार्यों के विचारों तथा उनके खंडनार्थ प्रस्तुत किए मतों के विवेचन के लिए भी यह स्थल उपयुक्त नहीं है। अंततो गत्वा व्यंजना शक्ति की प्रतिष्ठा होकर ही रही। बिहारी के दोहों का आलोड़न हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचाता है कि वे ध्वनिवादी थे, इसलिए उनके लिए स्वाभाविक था कि वे व्यंजना की सहायता लेते हैं। उनका समुचित मूल्यांकन करने के लिए उनकी कलात्मक विवेचना के सिलसिले में व्यंजना का विश्लेषण अत्यावश्यक था। आचार्यों के मतानुसार प्रमाणांतर से अनुपलब्ध परंतु शब्द प्रमाण से उपलब्ध अर्थ के प्रति किया गया व्यापार व्यंजना है, जो अभिधा लक्षणा एवं तात्पर्य वृत्ति से प्राप्त न हुआ हो। इससे स्पष्ट है कि व्यंजना शब्द का व्यापार है, यह प्रमाणांतर से अप्राप्त है तथा तात्पर्य वृत्ति से अनुपलब्ध है। प्रमाणांतर का अर्थ है शब्द प्रमाण के अतिरिक्त अन्य प्रमाण जो संख्या में सात हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, ऐतिहा और संभव। यहाँ पर एक प्रश्न यह उठता है कि जब व्यंजना शब्द का व्यापार है तो व्यंजना के दो भेद शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना क्यों किए जाते हैं? क्या यह बद्धतो व्याघात नहीं है? इसका उत्तर देते हुए मम्मट ने लिखा है, शब्द प्रमाण वैद्योर्था व्यनक्त अर्थांतरम यतः अर्थस्य व्यंजकत्वे तत् शब्दस्य सहकारिता। अर्थात जहाँ शब्द प्रमाण संवेद्य अर्थात पुनः किसी अर्थ की अभिव्यक्ति करे, वहाँ शब्द सहकारी है और अर्थ व्यंजक है। अतः जहाँ शब्द व्यंजक होगा वहाँ शाब्दी व्यंजना होगी, और जहाँ अर्थ व्यंजक होगा वहाँ आर्थी व्यंजना होगी। शाब्दी व्यंजना अभिधा मूला। शाब्दी व्यंजना नानार्थक शब्दों के प्रयोग से मानी जाती है, किंतु श्लेषालंकार में भी तो नानार्थक शब्दों का प्रयोग देखा जाता है। तब दोनों में भेद क्या है? इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि श्लेषालंकार से उद्भूत सभी अर्थ वाच्य होते हैं, और शाब्दी व्यंजना से अनेकार्थक शब्दों में से उपलब्ध अर्थों में एक अर्थ व्यंग भी होता है। यहाँ एक बात और भी ध्यान देने की है, श्लिष्ट शब्दों का प्रयोग श्लेषालंकार में भी होता है और शाब्दी व्यंजना में भी। तब सवाल यह उठता है कि एक जगह श्लिष्ट शब्दों द्वारा प्राप्त सभी अर्थवाच्य होते हैं और दूसरी जगह उन्हीं शब्दों द्वारा प्राप्त अनेक अर्थों में एक अर्थ व्यंग कैसे होता है? इसके समाधान में यह कहा जाता है कि श्लेषालंकार द्वारा प्राप्त सभी अर्थ या तो प्राकरणिक होते हैं या अप्राकरणिक, परंतु शाब्दी व्यंजना द्वारा प्राप्त अर्थों में कुछ प्राकरणिक होंगे और कुछ अप्राकरणिक। आचार्यों का कहना है कि प्रकरण ज्ञान के कारण अभिधा और अर्थ देने में असमर्थ हो जाती है। इसके बाद जिस अप्राकरणिक अर्थ की प्रतीति होती है वह व्यंजना व्यापार द्वारा ही संभव है। संक्षेप में श्लेषालंकार और शाब्दी व्यंजना का भेद इसमें निहित है कि पहले दोनों अर्थों या तो प्राकरणिक होंगे या अप्राकरणिक, पर दूसरे में एक अर्थ प्राकरणिक होगा और दूसरा अप्राकरणिक। इसके स्पष्टीकरण के लिए बिहारी सतसई के ही दो उदाहरण लीजिए। श्लेषालंकार का एक उदाहरण, अजौ तरयौना ही रहयो, श्रुति सेवक इक अंग, नाक बास बेसरी लहयो, बसी मुकुतन कै संग। अब शाब्दी व्यंजना का एक उदाहरण देखिए, चिर जीवो जोरी जुरै क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। पहले उदाहरण के दोनों अर्थ प्राकरणिक हैं और दूसरे उदाहरण का एक अर्थ प्राकरणिक है, दूसरा अप्राकरणिक। श्लेषालंकार में जहाँ कोषगत चमत्कार होता है वहां शाब्दी व्यंजनाओं में व्यंग अर्थ के कारण चारुत्व अधिक आ गया है। इस उदाहरण में केवल अप्राकरणिक अर्थ ही व्यंग नहीं है बल्कि दोनों अर्थों में एक सूत्रता स्थापित करने वाला उपमा अलंकार भी व्यंग है। यदि दोनों अर्थ सर्वथा असंबद्ध होते तो कवि की प्रतिभा असिद्ध मानी जाती। संबंध स्थापनार्थ जिस उपमा का आक्षेप यहाँ करना पड़ रहा है उसे दोनों वाक्यार्थों में उपमानों में भाव स्थापित होगा। उपमान उपमेय भाव के कारण जिस विनोद की सृष्टि उक्त दोहे में की गई है वह रमणीयार्थ प्रतिपादक हो गया है। लक्षणामूला, इस व्यंजना का संबंध प्रयोजनवती लक्षणा से है। इसमें प्रयोजन या फल की प्रतीति व्यंजना द्वारा मानी जाती है। लक्षक शब्द के प्रयोग में वक्ता का कोई ना कोई प्रयोजन निहित रहता है। यह प्रयोजन सर्वदा व्यंग होता है। इस व्यंग्यार्थ की स्पष्टता अस्पष्टता के आधार पर इसके दो भेद किए गए हैं, अगूढ़ व्यंग्या और गूढ़ व्यंग्या। अगूढ़ व्यंग्या में व्यंग अस्पष्ट होता है, अतः गूढ़ व्यंग्या की अपेक्षा इसका काव्यात्मक स्तर नीचा होता है। कुछ उदाहरण लीजिए। पहला, फिरत जो अटकट कटनी बिनु रसिक सुरस न खियाल। दूसरा, सदन सदन के फिरन की सद न छुटे हरिराई। तीसरा, प्राण प्रिया हिया में बसे नख रेखा ससी भाल, भलो दिखायो आई यह हरिहर रूप रसाल। उपर्युक्त दोनों उदाहरण में विपरीत लक्षणा से रसिक का अर्थ अरसिक और हरिराय का अर्थ अप्रतिष्ठा सूचक हो गया है। रसिक का लक्ष्यार्थ अरसिकम तथा इसका प्रयोजन रूप व्यंग्यार्थ रसिकता लंपटता का अतिशय है। गूढ़ व्यंग्या, अपेक्षाकृत अस्पष्ट होने के कारण गूढ़ व्यंग्या अधिक व्यंजक होती है। पहला, लह लहाती तन तरुणई लची लगी लौ लफी जाई। दूसरा, होमती सुख करी कामना तुम ही मिलन की लाल। लहलहाना तारुणी का धर्म नहीं है बल्कि हरे भरे खेतों और हरी भरी क्यारियों का धर्म है। मुख्यार्थ बाधा से इसका लक्ष्यार्थ हुआ नैनाभिराम भरा पूरा यौवन और प्रयोजन रूप व्यंग्यार्थ हुआ यौवन की संपूर्ण विशेषताओं की पराकाष्ठा। दूसरे उदाहरण में होमती कष्टातिशय का व्यंजक है। आर्थी व्यंजना, आर्थी व्यंजना में व्यंजना अर्थ का व्यापार है। कुछ विद्वानों के मतानुसार व्यंजना सर्वदा अर्थ का व्यापार होती है, शब्द का नहीं, पर ध्वनिवादियों की दृष्टि से यह असंगत है। आर्थी व्यंजना में अर्थ व्यंग्यार्थ का साधन है। वह अर्थ जिससे व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है वाच्य भी हो सकता है, लक्ष्य तथा व्यंग भी। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ तीनों अर्थों से व्यंग अर्थ की प्रतीति होती है। इसके अनुसार आर्थी व्यंजना के तीन भेद किए गए हैं, वाच्य संभवा, लक्ष्य संभवा और व्यंग्य संभवा। इनके बहुत से उदाहरण सतसई में भरे पड़े हैं। वाच्य संभवा के उदाहरण देखिए। पहला, तंत्रीनाथ कवित रस सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरय जे बूढ़े सब अंग। दूसरा, घाम घरिक निवारिये कलित ललित अलिकुंज, जमुना तीर तमाल तरु मिलित मालती कुंज। प्रथम दोहे में वाच्यार्थ परस्पर विरोधी बातें व्यक्त करता है। इसका व्यंग्यार्थ होगा कि तंत्री नाद आदि में आकंठ मग्न होने पर पूर्ण रसास्वादन होता है। दूसरे उदाहरण में व्यंग्य है नायिका का स्वैर विहार। लक्ष्य संभवा के उदाहरण देखिए। कत सकुचत निधरक फिरव व्रतियो खोरी तुम्हें न, कहा करो जो जाइए लंगे लगाओ है नैन। लक्ष्य संभवा आर्थी व्यंजना में तीन अर्थों की प्रतीति होती है। लक्षणामूला शाब्दी व्यंजना में लक्षक शब्दार्थ व्यंग होता है, पर लक्ष्य संभवा आर्थी व्यंजना में लक्ष्यार्थ से व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है। इस उदाहरण में वाच्यार्थ है, संकुचित क्यों होते हो, निर्धड़क फिरा करो, तुम में रत्ती भर दोष नहीं है, यदि ये लगाव है नयन कहीं लग जाए तो तुम क्या करो। लक्ष्यार्थ यह है, तुम स्वयं दोषी हो, ना तो तुम्हें संकोच है और न डर, तुम न जाओ तो क्या तुम्हारी आंखें तुम्हें घसीट ले जाएंगी। इस लक्ष्यार्थ का व्यंग्यार्थ है कि तुम बहुत बड़े निर्लज हो, बेहया हो, यदि तुम चाहो तो अपने स्वभाव को बदल सकते हो। व्यंग्य संभवा के एक उदाहरण देखिए, सन सुक्यो वित्त्यो बनाओ, उखाओ लई उखारी, हरी हरी अर हरी अजाओ, धरी धरी हरी हिय नारी। इसमें अरहर की सघनता व्यंग्य है और उससे व्यंग्यार्थ निकलता है, बहुत उपयुक्त सहित स्थल, व्यंग्यार्थ बोध के सहायक। वाच्य लक्ष्य और व्यंग्य अर्थों में व्यंग्यार्थ बोध की क्षमता, वक्ता बोधव्य काकु, वाक्य वाच्य अन्य के सानिध्य, प्रस्ताव देश काल तथा चेष्टा के वैशिष्ट से प्रादुर्भूत होती है, पर व्यंग्यार्थ की झलक उसी को मिल सकती है जो प्रतिभा संपन्न हो। वक्त्री वैशिष्ट इसमें वक्ता के स्वभाव आदि की विशिष्टता जान लेने पर व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है। मुख्यार्थ वक्त्री वैशिष्ट के संदर्भ में ठीक ठाक नहीं बैठ पाता, ऐसी स्थिति में उससे वक्ता की विशिष्टता के कारण व्यंग अर्थ की प्रतीति होती है। लटकी लटकी लटकल चलत, डरट मुकुट की छाह, चटक भरयो नट मिली गयो, अटक भटक बटमाह। इस दोहे में वक्त्री वैशिष्ट्य के कारण उसकी प्रेम क्रीड़ा व्यंग्य है। वाच्य वैशिष्ट्य में व्यंग्यार्थ प्रतीति का मुख्य साधन वाच्यार्थ है। वाच्य वैशिष्ट्य इसमें वाच्य साधन है और व्यंग साध्य। घाम घरिम घाम घरिक निवार्य, कलित ललित अलिपुंज, जमुना तीर तमाल तरु, मिलित मालती कुंज। इसके वाच्य वैशिष्ट्य इसमें देश और काल वैशिष्ट्य भी है। जमुना तीर देश वैशिष्ट है और घाम घरिक निवार्य में काल वैशिष्ट है। नायिका की रति कीड़ा की अभिलाषा व्यंग्य है। चेष्टा व्यंग्यार्थ की प्रतीति कराने वाले साधनों में चेष्टा का विशेष महत्व है। अभिनय के प्रकरण में इन चेष्टाओं या भंगिमाओं का बहुत महत्व आंका गया है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विचार करने पर भाव व्यंजना में चेष्टा का पर्याप्त योग मानना होगा। वास्तव में चेष्टाएं दो प्रकार की होती है, साधक और सिद्ध। जब कभी वे वाणी के सहायक के रूप में व्यक्त होती है तो वे साधक कही जाएंगी। बात करते समय वार्ता में पूर्णता लाने के लिए व्यक्ति हाथ आँख मुख आदि से अनेकानेक चेष्टाएं करता है। जहां वाणी मुख होती है, कुछ ऐसे प्रसंग होते हैं जहां वाणी से काम नहीं लिया जा सकता, क्योंकि सामाजिक विधि निषेध उनके अनुकूल उनके प्रतिकूल पड़ते हैं, वहां उनका स्थान चेष्टाएं ले लेती हैं। इनको सिद्ध चेष्टा का नाम दिया जा सकता है। ये चेष्टाएं प्रायः गुणार्थ की द्योतक होती हैं। प्रेम प्रसंगों में इन गुणार्थ गर्व चेष्टाओं का जितना महत्व आंका जाए थोड़ा है। यहाँ एक बात और भी ध्यान देने की है कि ये चेष्टाएं संयोग मूलक चेष्टाएं हैं, वियोग में इनका कोई महत्व नहीं है। वियोग की भाव विह्वल अवस्था में इस सचेत व्यापार का कोई स्थान नहीं है। बिहारी के क्रीड़ापरक दृष्टिकोण के कारण उनकी सत्सई में चेष्टाओं के उदाहरण भरे पड़े हैं। कुछ उदाहरण देखिए। पहला, त्रिबली नाभि दिखाई करी, सिर ढकी सकुची समाही, गली अली की ओट कह, चली भली विधि चाही। दूसरा, भौं ऊंचे आचर उलटी, मौर मोरी मुह मोरी, नीठी नीठी भीतर गई, डिठी डिठी सो जोरी। तीसरा, लखी गुरुजन बीच, कमल सौ शीस छुआयो श्याम, हरि सन्मुख करी आरसी, हिय लगाई बाम। तीसरे दोहे की रत्नाकरी टिप्पणी देखें। गुरुजनों के बीच में देखकर श्याम ने सिर कमल से छुआया, बाम ने आरसी हरि के सामने करके हृदय में लगा ली। पर यदि इसको काव्य मान लिया जाए तो पहेलियों को भी इसी की श्रेणी में रखना होगा। व्यंग्य के तीन भेद, वस्तु अलंकार और रस की दृष्टि से व्यंजना के तीन भेद होते हैं, वस्तु व्यंजना, अलंकार व्यंजना और रस व्यंजना। वस्तु और अलंकार के लिए व्यंग होना अनिवार्य नहीं है, वे वाच्य भी होते हैं, पर रस व्यंग्य ही होता है, वाच्य रूप में रस प्रतीति हो ही नहीं सकती। बिहारी सत्संग में तीनों तरह की व्यंजनाएं मिलती हैं। वस्तु व्यंजना, कुंज भवन तजी भवन कौ, चलिया नंद किशोर, फूलती कली गुलाब की, चटकाहत चहु ओर। अंतिम पंक्ति से दो वस्तुओं की व्यंजना हो रही है, एक तो फूली हुई गुलाब की कली की चटचटाहट की और दूसरी प्रातःकाल की। अलंकार व्यंजना, तू रखी सखी हौ ही लखौ, चढ़ी न अटा बलिबाल, सबही बिनूही ससी उदय, दोजत अरग अकाल। यहाँ भ्रांतिमान अलंकार व्यंग्य है। रस व्यंजना, जहाँ जहाँ ठारव, लख्यौ श्याम सुभग सिरमौर, उनहु बिन छिन गही, रहत द्रिगनी अजौ वह ठौर। जहाँ जहाँ सुंदर पुरुषों के सिरुमणि श्याम को खड़ा देखा था, वह ठौर अब तक उनकी अनुपस्थिति में भी दृगों को क्षण मात्र पकड़ रखता है। श्री कृष्ण के संसर्ग में आने वाली सभी स्थान आंखों को क्षण भर के लिए पकड़ लेते हैं। इस तरह स्मृति संचारी व्यंग होता है। इस स्मृति संचारी में से विप्रलम श्रृंगार की व्यंजना होती है। व्यंजना के अनेक भेद होते हैं और उदाहरणों की पर्यालोचना हमें यह सोचने के लिए बाध्य करती है कि व्यंजना सर्वत्र उत्तम काव्य की द्योतिका नहीं है। आचार्यों ने इसलिए उत्तमोत्तम, उत्तम मध्य और अधम काव्य श्रेणियां मानी हैं। उत्तमोत्तम काव्य वही माना जाएगा जिसमें रस ध्वनि के अधिक स्थल मिले। इस दृष्टि से सत्संग का अध्ययन रोचक विषय होगा। यहाँ यह शीर्षक समाप्त होता है।